नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। नेपाल में संसदीय चुनाव में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी प्रचंड जीत की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के समारोहों को संबोधित करेंगी। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों से 52,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। सीबीएसई ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में 9, 10 और 11 मार्च को होने वाली 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में अहमदाबाद में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपेई के सीवाई लिन से। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी संसदीय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए तैयार है। रैपर से राजनेता बने 35 वर्षीय बालेंद्र बालिन नाम से लोकप्रिय हैं। उन्होंने झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र में 4 बार प्रधानमंत्री रहे श्री केपी शर्मा ओली को हराया। आरएसपी ने कुल 165 में से 106 सीटें जीती हैं। पार्टी 18 सीटों पर बढ़त भी बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के सफल आयोजन के लिए नेपाल की जनता सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल की जनता तथा उसकी नई ऊंचाइयों के साथ मिलकर शांति, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 7 मार्च तक खाड़ी क्षेत्र से 52,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया खाड़ी के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय नागरिकों को दूतावास के परामर्शों का पालन करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावासों में हेल्पलाइन शुरू की गई है। मंत्रालय ने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नई दिल्ली में एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में 9, 10 और 11 मार्च की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने बताया कि 10 मार्च को स्थिति की समीक्षा की जाएगी और 12 मार्च से होने वाली परीक्षाओं के संबंध में उचित कार्यवाही होगी। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों के संपर्क में रहने और आधिकारिक घोषणाओं का पालन करने की सलाह दी गई है। ईरान में अमरीका और इसराइल के हवाई हमले, मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के साथ पश्चिमी एशिया संघर्ष का आज 9वां दिन है। ये संघर्ष अब खाड़ी के कई देशों में फैल गया है।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करने तक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। इसराइली रक्षा बलों ने ईरान में परचिन और शाहरुद में 2 प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर भी हमले किए। हमलों में तेहरान के तेल भंडारण केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने कहा कि पड़ोसी देशों को अब निशाना नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं सैन्य बलों के भीतर गलत सूचना के कारण हुई हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि हमलों में 1,332 ईरानी नागरिक मारे गए हैं। उधर लेबनान में नबी चित शहर में इसराइली हवाई हमलों में 41 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत में शत्रुता तत्काल समाप्त करने और समस्या के राजनयिक समाधान की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
ताइवान के सांसद चियापिन चुंग ने कहा है कि भारत इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि ताइवान क्षेत्र शांति और समृद्धि के लिए भारत जैसे देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। श्री चुंग ने कहा कि ताइवान भारत की तरह चीन के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं गैरकानूनी हैं और ताइवान खुद पर चीन की दावेदारी स्वीकार नहीं करता। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस वर्ष का विषय है महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्यवाही। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला अधिकारों को मजबूत करने, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और स्त्री पुरुष समानता में तेजी लाने की भावना को दर्शाता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सीमाओं से परे महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने पर बल देना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1977 में मान्यता प्राप्त यह दिवस आज लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। भारत में केंद्र सरकार भी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों, योजनाओं और विधायी उपायों के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है। देश में लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कई इकाई पहल की गई है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गिव टू गेन नामक वैश्विक अभियान के साथ मनाया जा रहा है, जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सामूहिक सहयोग की शक्ति को रेखांकित करता है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज और राष्ट्र की नींव हैं और शिक्षित, आत्मनिर्भर तथा सशक्त महिलाएं समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज युवा महिलाएं नए भारत के सपने साकार कर रही हैं। राष्ट्रपति नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एक समारोह में शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें दिल्ली मेट्रो के 18,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 2 नए गलियारों का भी शुभारंभ करेंगे। 11वां रायसीना डायलॉग कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 3 दिन के इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। संवाद में इस वर्ष का विषय था संस्कार, कथन, सामंजस्य, उन्नति। चर्चा सत्रों में दुनिया भर की हस्तियों ने 6 विषयों पर अपने विचार रखे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कहा कि भारत का उत्थान दूसरों की गलतियों से नहीं बल्कि इसकी अपनी सैन्य शक्ति से निर्धारित होगा। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के देशों को भारत के विकास से लाभ होगा और भारत के साथ काम करने वाले देशों को और भी अधिक फायदा होगा।
इंडिया has a particular salience.
हिंद महासागर के संदर्भ में भारत का विशेष महत्व है और इसलिए यह एक विशेष जिम्मेदारी और योगदान भी है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारे अच्छे संबंधों के चलते हम कई देशों को एक मंच पर ला सकते हैं। अपने सहयोगी देशों सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका की नौसेनाओं और तट रक्षक बलों के साथ हमारा एक लंबा सहयोगात्मक इतिहास रहा है।
T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज अहमदाबाद में वर्तमान चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच 7 बजे से खेला जाएगा। एक रिपोर्ट।
2007 और 2024 की विश्व विजेता टीम इंडिया के पास खिताबी हैट्रिक पूरा करने वाली पहली टीम बनने का शानदार मौका है। बेहद रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात देने वाली टीम इंडिया के सामने उलटफेर करने में माहिर न्यूजीलैंड की टीम है। शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह पर एक बार फिर सभी की निगाहें होंगी। कप्तान सूर्य कुमार की अगुवाई में हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह जहां इन फॉर्म हैं, वहीं आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब हैं। टीम इंडिया इसी मैदान पर 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के इतिहास को खिताबी जीत के साथ बदलना चाहेगी। उधर न्यूजीलैंड की टीम ने लीग मैचों और सुपर 8 चरण में खराब प्रदर्शन से उबरते हुए सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले में हराया था। शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार।
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के सी वाई लिन से होगा। कल सेमीफाइनल में लक्ष्य ने कनाडा के विक्टर लाई को हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के संसदीय चुनाव में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी प्रचंड जीत की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के समारोहों को संबोधित करेंगी। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों से 52,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में अहमदाबाद में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के सी वाई लिन से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।